जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री बरसानो धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। अरे बोलो बोलो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज के इस पवित्र दिवस पर, पवित्र क्यों है? क्योंकि आज महावराह द्वादशी है, वराह महाद्वादशी, और साथ साथ में आज भगवान नित्यानंद प्रभु का भी आविर्भाव यानी कि जन्म दिवस है। कल के एकादशी के बाद में आज भी पवित्र दिवस है। तो आज के इस पवित्र दिवस में 29 जनवरी को 2018 आपका श्री बरसाना धाम में स्वागत है। श्री बरसाना धाम की
जय।
आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, इन्होंने इस जगह पर श्री वृंदावन धाम को प्रकट किया है, और जहां पर भी संत लोग इच्छा करते हैं उनकी इच्छा से धाम प्रकट हो जाता है। वैसे तो जहाँ पर भी संत लोग जाते हैं उनके चरणों में सारे धाम यात्रा करते रहते हैं, उनके हृदय में, हाँ, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, संत लोगों के हृदय में हमेशा गोविंद भगवान कृष्ण भगवान विश्राम करते हैं, और जहाँ पर कृष्ण भगवान रहते हैं सारे धाम वहीं निवास करते हैं। इसलिए तीर्थी कुर्वंती तीर्थाणी, संतों के चरणों में सारे धाम चलते रहते हैं। तो हमारे परम गुरुदेव, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, उन्होंने इच्छा किया था कि भारत भर में और विश्व भर में जगह जगह पर वृंदावन धाम निर्माण करना चाहिए, क्योंकि भारत का जो वृंदावन धाम है वो सब लोग वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, गारंटी नहीं है, लेकिन लोगों को श्री वृंदावन धाम का अनुभव जगह जगह बहुत पास पास में होना चाहिए। इसलिए ये इस्कॉन के अंदर ऐसे एक ही जगह नहीं है, एक ऑस्ट्रेलिया में भी है और एक हंगेरी में भी है, तो तीन चार जगह पे ऐसे माहौल निर्माण किया है। तो भारतवर्ष में सबसे पहले ये निर्माण किया है। तो ये जगह जो है ये बरसाना है, यहाँ पर जो फोटोग्राफ है वो श्री श्री लाडली लाल, लाडली यानी बहुत ही डियर, वेरी वेरी डियर, लाडली यानी राधा रानी और लाल यानी श्री कृष्ण, इनके विग्रह का फोटोग्राफ जो ओरिजिनल फोटोग्राफ है वो यहाँ पर लगाया है। और ये आप देख रहे हो, जैसे ये मंदिर है वैसे ही राधा रानी का मंदिर उधर बरसाने में है, सेम टू सेम, थोड़ी साइज कम है प्रैक्टिकल हिसाब से, लेकिन जिस प्रकार से वो मंदिर का डिजाइन है, जिस प्रकार के पिलर्स हैं आप देखेंगे वैसे के वैसे ही है। यहाँ तक कि जो बोर्ड लगा है ना, ये मंदिर में फोटो लेना मना है, ये जिस प्रकार से लिखा है वो भी टिकटो कॉपी है, ताकि जो लोग वहां पर गए हैं उनको यहाँ पर आने के बाद में लगेगा कि हम बरसाने में हैं। ये टाइल्स भी उसी तरह के लगाए हैं, सब कुछ वैसे वैसे के वैसा है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो आदमी बना सकता है, लेकिन भगवान का जो अस्तित्व है वो प्रकट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारा तो मिस्त्री लोग, डिज़ाइनर लोग, आर्किटेक्ट लोग बना सकते हैं, लेकिन भगवान का आना ना आना ये संत पर निर्भर होता है। जब संत लोग आह्वान करते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो बरसाने में चार पहाड़ हैं, आप लोग दो बार जा चुके हैं ना उधर, एक बार बताइए चार पहाड़ कौन से हैं? एक बार जो जाता है ना, इसलिए कहते हैं नोटबुक लेके जाओ, क्योंकि नोटबुक में लिखा है तो कभी ना कभी पढ़ेंगे, लेकिन नोटबुक में नहीं लिखा है तो दिमाग पर भरोसा करेंगे तो कलयुग में फिर हरि बोल, दिमाग पर भरोसा कलयुग के लिए नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था 120,000 साल, सत्ययुग के पहले 60,000, सत्ययुग के एंड में 60,000, और ऐसा कुटू के आटो के लड्डू साबूदाना वड़ा खा के नहीं किया था उन्होंने। हम लोग ऐसा हमारा उपवास में कैसा, उधर वराई के डोसे, कोकोनट की चटनी, कुटू के आटे का लड्डू और साबूदाना खिचड़ी और एकादशी की जलेबी, हाँ वो दूधी की बनाई हुई, ऐसा हमारा एकादशी उपवास होता है और बड़े गर्व से हम उसको हम पारण कर रहे हैं और कल से दुगना खाते हैं। क्योंकि कल एकादशी था ना, इतना उपवास किया, कल अभी क्या करें। अभी ब्रह्मा जी ने कुछ भी ना खाते हुए, केवल हवा खाकर 120,000 साल तपस्या किया। उसके एंड में भगवान ने दर्शन दिया उनको, बोले क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे आपके चरणों का धूल चाहिए, आपके और आपके भक्तों का, राधा रानी का, गोपियों का चरणों का धूल चाहिए। तो उन्होंने कहा वृंदावन चले जाओ। तो वृंदावन कहाँ जाओ, वृंदावन तो बहुत बड़ा है, तो वृंदावन में बरसाने में जाओ। तो फिर भगवान ने कहा बरसाने में जाओ, वृषभानुपुर जाओ, वृषभानु महाराज की कन्या राधा रानी है, वो राजा हैं, उनके पूर्व में चले जाओ। तो वहां पर ब्रह्मा जी जाके पर्वत बने हैं, कोई फ्लैट बना के नहीं रहे वहां पर कि आएंगे तो देखूंगा मैं। हम लोग क्या करेंगे, देख घर लेंगे, कुछ झोपड़ी लेंगे, कुछ जमीन खरीदेंगे, घर बांधेंगे। ब्रह्मा जी का भाव देखो आप, हाँ ब्रह्मा जी कौन है जानते आप? CEO ऑफ द यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड के वो सबसे प्रथम नागरिक हैं, भगवान के द्वारा निर्माण किए सबसे प्रथम जीव है वो, प्रमुख सबसे प्रथम, उन्होंने सब लोगों को निर्माण किया है, आपको और हमको भी। इतना बड़ा आदमी है वो, इतने बड़े अफसर हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, इतनी बड़ी शक्ति है उनके पास निर्माण करने की, चार मुख है उनके पास। जिस ब्रह्मांड में चार दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसमें चार सर वाले ब्रह्मा होते हैं। तो वो ब्रह्मा जी ने, हमारे ब्रह्मा जी ने जिस पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये पृथ्वी में जो निर्माण किया है वो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था। इसलिए बरसाने में जो पर्वत बने हैं उसके चार शिखर हैं, क्योंकि उनके चार सर हैं। तो सबसे पहला जो सर है उनका वो है ये, इसका नाम है भानुगढ़, क्योंकि उनका नाम था वृषभानु महाराज, इसलिए उनका महल था वहां पर, वहां रहते थे वो, जहां पर राधा रानी भी रहती थी, इसलिए उसका नाम पड़ा भानुगढ़। और उस पर है भानु महल, और उस पर आज है लाडली लाल मंदिर। दूसरा जो सर है उनका, उनका नाम है दानगढ़, वहां पर दान बिहारी जी का मंदिर है, वहां पर कृष्ण भगवान जाकर दान मांगते थे। क्या दान मांगते थे वो? उनको दान मांगने की जरूरत क्या है, सब कुछ तो उनका ही है, आप भी देंगे तो उनका ही निकाल के देंगे, तो वो किसके दान, किसका दान मांग रहे हैं, कोई आइडिया है क्या? जो उनके पास नहीं है, उनके पास है बहुत सारा लेकिन फिर भी आपसे मांग रहे हैं, वो क्या है? प्रेम, प्रेम, प्रेम रति, हाँ प्रेम का दान मांगते हो। उनके पास भी बहुत प्रेम है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपसे प्रेम मांगते हो। तो इसलिए दानगढ़ में भगवान ने राधा रानी और गोपियों से प्रेम दान मांगने की लीला की है, और वहां पर दान बिहारी के रूप में वो उपस्थित है दानगढ़ पे। उसके आगे जाएंगे तो विलासगढ़ आएगा, विलासगढ़। वो विलासगढ़ में भगवान विलास करते हैं, यानी झूला झूलते हैं, लुका छुपी खेलते हैं, रास भी रचाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, हास परिहास करते हैं। विलास का मतलब है आनंद की लीला, जिससे मन को प्रसन्नता, आनंद, खुशी प्राप्त हो, ऐसे लीला करते हैं। वहां पर नाम ही पड़ा है विलासगढ़। वहां पर झूला भी लगाया हुआ है, बैठने की जगह है, बहुत सारा खाने पीने की व्यवस्था सब गोपियां करती हैं। जैसे हम लोग पिकनिक बनाते हैं ना, वैसे विलासगढ़ में जाके वो पिकनिक बनाते हैं। जो मर्जी है, खाना पीना करना है खाते पीते हैं, नृत्य करना है नृत्य करते हैं, गाते गाना है तो गाते हैं, जो भी मन बने, झूला झूलना है झूला झूलते हैं, कभी होली खेलना है तो होली खेलते हैं। ऐसा सुंदर विलासगढ़ है। और लास्ट गढ़ कौन सा है? मानगढ़। मानगढ़ जो है ना, ये चारों में से बहुत ही विशेष और बहुत ही क्या कहते हैं उसको, अंतरंग यानी कॉन्फिडेंशियल, बहुत गुह्य है। इसको कहते हैं ना कॉन्फिडेंशियल। सब लोगों को वहां पर समझता नहीं क्या है, यहाँ पर इधर क्या हुआ है समझ में नहीं आता है। जैसे आपका घर है ना, तो हॉल में लोगों को मिलते हैं आप, मेहमान आते हैं उनको मिलते हैं, चाय पाय पिलाते हैं, बात करते चले जाते हैं। डाइनिंग हॉल में क्या करते हैं? खाना खाते हैं। रसोई में क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, है ना। लेकिन अंदर होता है अंतपुर। अंतपुर का मतलब जहां पर आप सोते हो, वहां पर पब्लिक प्रवेश करता है क्या? एकदम खास घर का कोई होगा तो इसको एंट्री मिलती है ना। आपके बेडरूम में सब लोग खड़े घुसते हैं, जो लोग आपके एकदम निकट हैं और आप चाहते हैं कि अंदर आ जाए, उनको आप अंदर ले जाते हो। तो वैसे मान मंदिर जो है ना, वो राधा रानी का अंतपुर है। जैसे पति पत्नी झगड़ना है समझो, उनको अच्छा झगड़ना है तो क्या करते हैं? अंदर जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, फिर दिल खोल के झगड़ते हैं, है ना, ताकि कोई घर में मेहमान सर्वेंट वर्वेंट को है वो सुने नहीं आपका क्या चल रहा है। लेकिन झगड़ना है तो आप कहाँ जाएंगे? अंतपुर में जाएंगे, अंतर कक्ष में जाएंगे। तो राधा रानी यहां पर मान करती है। जानबूझ के हमने क्रोध नहीं कहा, क्योंकि क्रोध हम लोग करते हैं, क्रोध हम लोग स्वार्थ से करते हैं, और मान स्वार्थ से नहीं होता है। मान जो है प्रियतम पर प्रीति बढ़ाने के लिए मान होता है, जिससे और प्रीति बढ़ती है और प्रेम और लगाव बढ़ जाता है। तो राधा रानी वहां पर कई बहाने बनाती है और रूठ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक दिन भगवान ने और राधा रानी ने एक दूसरे का श्रृंगार किया, नॉट श्रृंगार, डेकोरेटिंग, मेकअप। एक दिन राधा रानी ने कृष्ण का श्रृंगार किया और कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया। पूरा श्रृंगार हो गया तो राधा रानी बोलती है, अब मेरा श्रृंगार का वर्णन करो, हाँ, डिस्क्राइब माय ब्यूटी। तो भगवान देख रहे हैं, इतना सौंदर्य है, इतना सौंदर्य है, इतना सौंदर्य है, अभी किसकी उपमा देंगे? कुछ चाहिए ना, कभी गुलाब की फूल की तरह या चंपा के फूल की तरह, ऐसा कुछ बोलना चाहिए ना। लेकिन पूरे आसमान सब जगह देख रहे हैं कि उनके तुलना में सुंदर कोई वस्तु है ही नहीं। फिर आकाश में देखते हैं तो आकाश में चंद्रमा आ रही है, संध्या का समय है, देखते हैं, हाँ ये बढ़िया है। तो कहते हैं, राधा रानी आपका जो मुख कमल है वो चंद्रमा के समान है। आपका नाम क्या है? अश्विनी। अगर अश्विनी को कोई बोलेगा कि आपका मुखड़ा चंद्रा के समान है, कितना अच्छा लगेगा उसको, इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। ये सब घंटियां बंद करो आप, क्योंकि घंटी बजते हमारा समाप्त हो जाता है, फिर वो कट है ना। तो राधा रानी को चंद्रमा की उपमा देने के बाद में अच्छा नहीं लगा, क्यों बताओ? हाँ, उसने आठ कारण दिए, उसके एक कारण नहीं दिया है, आठ दिए है, मेरे को पूरे आठ पता नहीं है, लेकिन एक कारण दिया कि चंद्रमा में दाग होते हैं, हमारे सौंदर्य में कोई दाग नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो कैसे आप उपमा दे सकते हैं? और कहते चंद्रमा जो है ना, वो घटती है और बढ़ती है, घटती है और बढ़ती है, हमारा सौंदर्य हमेशा बढ़ते ही रहता है, तो आप घटने बढ़ने वाले की तुलना कैसे कर सकते हैं? और चंद्रमा को ग्रहण लगता है, होने पर भी दिखता नहीं कभी, वो हमारे सौंदर्य को कभी ग्रहण लगता नहीं है, ऐसे कारण दिए उन्होंने। और एक लास्ट कारण दिया ना, वो बहुत ही रोचक कारण था। उनकी एक राइवल है, प्रतिस्पर्धी होता है ना सब जगह पर, उनकी एक राइवल है, प्रेम से है, ऐसा हमारे जैसा दुनिया जैसा नहीं है, उसका नाम है चंद्रावली। वो कहते हैं कि हमारी जो प्रतिस्पर्धी है उसके नाम में चंद्र है, तो उसकी तुलना कैसे हमारे साथ कर सकते हैं? तो वो रूठ के बैठ गई, चली गई वो, मतलब से आपसे बात नहीं करेंगे, लूट गई। अभी राधा रानी लूट गई तो भगवान जी नहीं सकते, भगवान के लिए सब कुछ है लेकिन राधा रानी के सामने कुछ भी नहीं है। तो राधा रानी लूटती है तो मानो जिंदगी समाप्त हो रही है, ऐसे भगवान रोने लगते हैं। फिर ललिता आती है वहाँ से, सखी है राधा रानी की, वो मनाना कोशिश करती है, राधा रानी मान जाओ, ऐसा बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जैसा मनाने की कोशिश करती है तो आगे 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 चली जाती है, बाद में एकदम टॉप में जाके बैठ जाते हैं पाउंड। अभी आप जा रहे हो तो आप आ रहे हैं देख के वो और ऊपर जा रही है, तो और ऊपर जाएगी तो वो वापस आएगी तो और ऊपर जाएगी। फिर कृष्ण को जाके बोलते हैं कि नहीं मान रही है, जाओ जाओ मनाओ और बनाओ, ऊपर जाती है तो वो उसको देख के और ऊपर जाती है, लास्ट में एकदम चोटी पे बैठ जाती है ऊपर, एकदम हार जाते हैं। उसके बाद में एक सुंदर जगह है उसके सामने जिसका नाम है मोर कुटी। कितने लोग गए वहां पर देखो, कभी राधा रानी आपने अंतपुर को आपको बुलाएंगे तो आप भी जा सकते हो, उनका वीजा चाहिए वहां का, उसके बिना प्रवेश नहीं मिलता है। तो फिर मैं बहुत एकदम लंबी कथा छोटी कर रहा हूं, बहुत सुंदर कथा है। तो वहां भगवान मोर बनकर नाचे हैं, राधा रानी को पता नहीं है कि ये मोर कौन है। मोर बनकर तुरंत ललिता ने कुछ कान में बोला उनके, बहुत देर ट्राई किया ना अभी, क्या कुछ ना कुछ करना चाहिए ना आइडिया, तो फिर कान में कुछ बोला तो भगवान तुरंत चले गए, ललिता भी चली गई और राधा रानी रूठ के बैठी हुई है। कुछ जरा मुड़ के देखती है तो एक मोर नाच रहे हैं, इतना सुंदर नाच रहा है। तो सखियां बोल रही है देखो 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 नाच रहे हैं, तो भी देखने को तैयार नहीं, गुस्सा आया हो ना। फिर बहुत मना के घुमाते हैं उसको और जब देखती है ना तो उसको इतना अच्छा लगता है, इतनी सुंदर नृत्य कर रहा है मोर वो, भाई ये मोर कौन है, इतना सुंदर मोर तो कोई नृत्य करते हुए देखा नहीं हमने कभी आज तक। तो फिर इतना अभी जैसे ही राधा रानी देख रही है एकदम आश्चर्यचकित होकर, सखियां देख रही है तो मोर को भी नाचने के लिए और उत्साह आता है ना। जैसे कथा सुनने वाले को कथा सुनने में रुचि आती है ना तो बोलने वाले को और मूड आता है बोलने के लिए। ये आपके लिए एक मैसेज है बाय द वे। तो वैसे वो नाचने वाले मोर को बड़ा आनंद आया और नाचने लगा उत्साह से, फिर वो ऐसे बैठी थी उठ के तो फिर वो ऐसे बैठ गई तो और उसको उत्साह आया है ना। वैसे बैठ के देखने में एक अलग बात है ना, अभी आपको देखना है तो आप ऐसे बैठेंगे एकदम प्रेम से। तो फिर आखिर में क्या होता है, वो इतना सुंदर मोर नृत्य करता है कि राधा रानी उठकर ज्वाइन करती है उसको और खुद भी नाचने लगती है। बहुत देर अलग अलग पोज में नाचते हैं ना, तो एंड में वो मोर को जाके इतना प्रेम आता है उसको मोर के प्रति, तो मोर को जाके गले लगाते हैं। जब गले लगाते हैं तो पता चलता है कि ये श्याम सुंदर है, तो बहुत शर्माती है। तब तक उनका जो मान है वो कहीं दूसरे लोक में भाग गया होता है, देयर इज नो मान, हाँ कोई नाराजगी नहीं बचती है। तो वो जगह भी वहां पर है उसके सामने मोर कुटी। तो ये मान मंदिर पे बहुत सुंदर सुंदर लीला है, एक ही लीला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बार वहां पर मोर और मोरनिया राधा और कृष्ण लेके आए, कृष्ण अपने मोर को लेके आए, राधा रानी अपने मोरनी को लेके आई, और दोनों ने ना अपने कंगन, आपके हाथ में कंगन किसी के दिखते नहीं है, कंगन का स्टाइल ही चला गया अभी आजकल, कंगन है ही नहीं। तो वो सब वहां सखियां कंगन पहनते थे ना, तो ऐसे छुम छुम ऐसे बजाने लगे उसको, और पैर में पायल है ना, पैर भी ऐसे ऐसे बजाने लगे, ऐसे 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 ऐसे, और कंगन और पायल इसी का म्यूजिक बनाया। आप सोच सकते हो, आज तो खाली ऐसे सुनने की बात है, बस अनुभव तो नहीं हमको कुछ, लेकिन ऐसा सुंदर कंगन और पायल का म्यूजिक शुरू किया उन्होंने, इतना सुंदर म्यूजिक शुरू किया, उसको सुनते ही मोर ना नाचने लगे। जैसे मोर नाचने लगे ने आकाश में बादल आए और बूंदे बरसाने लगे, बहुत ऐसा घनघोर नहीं, बहुत ही मधुर एकदम अच्छा लगे ऐसी। और जैसे ही आने लगे ना मोर को और उत्साह आया, मोरों को और मोरनियों को, और फिर डांस शुरू किया उन्होंने, और बहुत देर तक मोर मोरनियों का डांस जो है वो सखी राधा रानी और कृष्ण भगवान देखते रहे। एक दिन और राधा कृष्ण वहां पर आए और राधा रानी ने कृष्ण को कहा आप मोर जैसा नृत्य करके दिखाओ। तो कृष्ण कृष्ण ही थे लेकिन मोर जैसा नृत्य करने लगे, जैसे बचपन में कृष्ण क्या करते थे, मेंढक जैसा कूदते थे, बंदर जैसा कूदते थे, पक्षी जैसा उड़ के दिखाते थे, लेकिन पक्षी नहीं है वो, वैसे ही मोर बने नहीं है अभी, लेकिन मोर जैसा ऐसे 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 डांस कर रहे हैं। उनका सुंदर डांस देख के राधा रानी को भी बहुत प्रेरणा हुई और वो भी मोरनी जैसा नृत्य करने लगी। उन्होंने बहुत देर तक डांस किया, कितना हो गया, 3 हो गया ना, और ऐसे अनंत लीलाएं हैं, लेकिन एक में वो खुद मोर और मोरनी इच्छा से बनकर आए और सखियों ने म्यूजिक दिया और दोनों ने नृत्य किया। एक बार ऐसे आए, ऐसे खड़े थे मान मंदिर में, तो सुंदर हवा बहने लगी। वायुदेव है ना, वायुदेव, वो भी भगवान की लीला में सहायता करते हैं, तो वायुदेव ऐसे प्रेम से घूम बहने लगे, तो दोनों के कृष्ण के ऊपर का वस्त्र ऐसे उड़ने लगा, राधा रानी की चुन्नी भी ऐसी हवा में उड़ने लगी। ऐसे उड़ रहे थे आप, समझो ऐसे खड़े हो और आपके वस्त्र ऐसे उड़ रहे आकाश में, ऐसे 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 उड़ रहे, बहुत सुंदर दिख रहा था। तो वो देखकर बादल इकट्ठा हुए, हल्की सी बिजली कड़की और हल्की सी बूंदें गिरने लगी आकाश में, ऐसा बाष्प, अभी कैसा है देखो, थोड़ा बाष्प है ना अभी भी, मिस्टी बोलते हैं उसको, मिस्टी एटमॉस्फेयर है ना, मिस्ट जैसे धुंध जैसे होती है ना, हल्की हल्की वो धुंध तैयार हो गई। वहां से हवा जब आ रही थी तो यमुना किनारे में जो कमल खिल रहे थे, जो मोगरा खिल रहा था, उसमें से हवा बह के उनकी खुशबू लेकर ऐसे आई, और यमुना जी के ऊपर ऐसे बाष्प होता है हाँ, वेपर्स मिस्ट, तो वो सुगंध और वो मिस्ट और ठंडी ठंडी हवा ऐसे बहकर राधा और कृष्ण के सुंदर शरीरों को आनंद देने लगे। फिर उनको नृत्य करने का मूड हुआ, फिर वो नृत्य करने लगे। जब नृत्य करने लगे तो ऑटोमेटिक वहां पर मोर का भाव उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उनका नृत्य जो है वो मोर के नृत्य में ट्रांसफॉर्म हो गया और बहुत देर उन्होंने नृत्य किया। ऐसे मान मंदिर और मोर मंदिर का रिश्ता है, बहुत सुंदर लीला है। और उस मोर कुटी में ना एक अंधे बाबा रहते थे, सुना आपने कहानी, सब सुना है, लेकिन अभी वो डिलीट हो गया है ना, कलयुग के दिमाग से सब डिलीट होता है अपने आप। बचता क्या है, जिसको बार बार याद करते हैं वही बचता है, जिसको दोहराते नहीं है वो अपने आप ही डिलीट हो जाता है। अभी कल मैंने सिंगदाने का एक पुड़ी निकाला पुराने एक बैग में से, सफर वाले बैग में से, खाने के लिए रखता हूँ ना मैं, लेकिन बहुत दिन उसको हाथ नहीं लगाया तो वो सफ़ेद हो गया था पूरा, तो सीधे मेरे कचरे के डब्बे में गया। अगर उसको रोज़ निकालता था तो मेरे पेट में जाते थे वो, लेकिन नहीं यूज़ किया तो कचरे के डिब्बे में गए। उसी प्रकार से आपने भगवान के लिए लीला की याद नहीं किया तो डिलीट होकर, क्या उसको बोलते हैं कंप्यूटर में, व्हाट इज दैट कॉल्ड, डस्टबिन, क्या बोलते हैं, एक है ना उसमें क्या है, रिसाइकल बिन, उसमें चला जाता है। एनीवेज, तो उधर एक अंधा बाबा रहता था, वो इतना सिद्ध महात्मा था कि उसको एक दिन, एनीवे सिद्ध महात्मा ऐसा था कि एक शेर उसका डिसाइपल था, शेर के गले में वो एक झोली लटकाते थे, झोली, और वो शेर पूरे मानपुर में जाकर भिक्षा करता था। समझा, आपका रिंग बजा टिंग टोंग, आप दरवाजा खोला था सामने शेर, तो कैसा लगेगा आपको, और वो बोल रहा है भवेति भिक्षाम देही ऐसा नहीं कर रहा है, क्यों, नम्रता से खड़ा है, कोई आवाज नहीं कर रहा है, उसको देख के लोगों को अच्छा लग रहा है, पता है अपना रोज का आता है ना वो, तो उसके झोली में वो रोटियां डालते थे, ऐसे चार घर की रोटी करके वो आता था और मोर मंदिर चढ़ के मोर कुटी वहां पहुंचता था, अपने गुरुदेव को वो रोटी अर्पण करता था, फिर गुरुदेव वो रोटी को भगवान को अर्पण करके खुद खाते थे और बचा हुआ प्रसाद उस शेर को खिलाते थे। अभी शेर को शिष्य बनाना कोई साधारण बात है क्या, सामान्य संत लोग शेर को शिष्य नहीं बना सकते, तो अद्भुत संत थे वो, इतने भक्ति थी उनकी। तो उनको एक दिन सपने में राधा रानी ने दर्शन दिया और राधा रानी ने बोला, एक तो क्या किया, पहले दर्शन देकर अपना और श्याम सुंदर जी का नृत्य दिखाया मोर का स्वप्न में, स्वप्न में उन्होंने दर्शन किया पूरा लीला का कि राधा और कृष्ण नाच रहे हैं मोर का, बहुत आनंद लिया उसने। अभी देखो, अंधे आदमी को सपना आ सकता है क्या, आप लोग नर्सिंग स्टूडेंट हो बताओ, कॉमन सेंस क्या बोलता है आपको, अभी आपको प्रूव करना पड़ेगा कैसे आ सकते हैं, अगर हाँ बोला तो प्रूव करना पड़ेगा, ना बोला तो भी प्रूव करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये आंखें तो बाहर की आंखें हैं, इसका ऑपरेशन होता है, मोतिया बनता है इसके अंदर, पर्दा होता है, वो टेस्ट होता है, फलाना फलाना बहुत कुछ होता है। लेकिन एक होती है मन की आंख, एक होती है आत्मा की आंख भी होती है। तो मन की आंखों में आप सपना दे सकते हैं, अंधा होने पर भी आपको सपना आ सकता है, यही इसका प्रूफ है। अरे मेडिकल स्टूडेंट है ना, उनको बताना चाहिए ना साइंस भी क्या है। तो फिर ये नृत्य समाप्त होने के बाद में राधा रानी ने स्वयं आके दर्शन दिया और कहा, बाबा अभी आपको ये पेंटिंग निकालना है। तो कहता, मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे पेंटिंग निकाल सकता हूं। वो कहती, मेरी कृपा से आप कुछ भी कर सकते हो, मेरी आपको आज्ञा है, मैं आपको शक्ति दूंगी, जो आपने देखा है उसका चित्रपट निकालो। तो अंधे साधु ने अंधा होते हुए भी वो चित्रपट निकाला हुआ है। और वो चित्रपट जो है ना, कैसे पता है, ऐसे राधा रानी खड़ी है और ऐसे कृष्ण खड़े हैं, एग्जैक्टली ऐसा गोल बनाया हुआ है, दोनों के हाथों से गोल बना हुआ है, दोनों झुके हुए हैं और ऐसे पंख ऐसे पीछे से मोर के बिखरे हुए हैं। तो उसका फोटो वहां पर है ना, वो फोटो की वहां पर पूजा होती है, वहां पर मूर्ति नहीं है कोई, वहां पर ये फोटो को रखा है वेदी पर और उसको कपड़ा पहनाते हैं, उसको हार पहनाते हैं, उसकी आरती पूजा दिन में होती है, भोग लगता है। तो ये मोरकटी का बहुत बड़ा रहस्य है और अनंत मोर लीलाओं का वहां पर दर्शन है। तो जय जय श्री राधे श्याम। तो ये जो है ये राधा रानी का घर है। यहां पर कौन कौन रहते हैं? यस, राधा रानी का परिवार में कौन कौन है? देखो समझो, अभी आपको समझो, आपको अश्विनी को अंशुला के घर को क्लोज होना है, फ्रेंड बनना है, तो आप पूछेंगे ना, तुझा घरी कौन है, मजा घरी कौन है, कितनी भाऊ कितनी बहन। तो जैसे हम परिवार के बारे में जानकारी करते हैं तो प्रेम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, अगर कृष्ण पर प्रेम करना है तो सब जानकारी आपको होनी चाहिए। समझो आपकी कल शादी होगी, समझो लड़का दिखाया जाएगा आपको, तो आप पूछेंगे ना, घरी कौन कौन है, कितनी भाऊ कितनी बहन, सब इंक्वायरी करेंगे ना, मम्मी को कितने भाई, पापा को कितने भाई, मम्मी की मम्मी है क्या। तो हम जानकारी क्यों करना चाहते हैं कि जिस पर आगे प्रेम करेंगे या प्रेम करना चाहते हैं उसके बारे में सब जानकारी हम करना चाहते हैं, इसलिए आपसे हम जानकारी करवा रहे हैं, क्योंकि आपको भी भगवान पर प्रेम करना है ना, आगे जाके, अभी करना है कि आगे जाके करना है? अभी, कल करना चाहिए था एक्चुअली, वो कल का दिन तो बीत गया, आज का दिन हाथ में है, आज से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान पर प्रेम नहीं करेंगे ना इस जिंदगी में तो हमारी जिंदगी बेकार है। तो एनीवेज, राधा रानी के माता पिता का नाम क्या है? वृषभानु महाराज पिताजी का नाम है, माताजी का नाम क्या है? कीर्तिदा, लिखो, उनके माता का नाम है कीर्तिदा और उनके घर में एक बड़ा भैया है, उसका नाम है श्रीदामा, वो कृष्ण का बहुत बड़ा सबसे प्रिय भक्त है, सखा फ्रेंड, उसको नारद मुनि ने वरदान दिया था कि तुम कृष्ण के सबसे प्रिय सखा बनोगे, उसका नाम श्रीदामा है। उसको ना, श्रीदामा को ना कृष्ण के बिना रात को नींद नहीं आती है, इतना उसको कृष्ण का विरह होता है रात में, बहुत दुखी हो जाता है वो। तो श्रीदामा के बारे में बताता हूं आपको मैं, ये सब कहानियां आगे काम आएगी आपको, अभी समझेगा नहीं आपको, आगे जब शादी होगी फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चे बोलेंगे मम्मी स्टोरी सुनाओ, तो हम शाहरुख खान की स्टोरी सुनाएंगे, ऐश्वर्य की कहानी सुनाएंगे, इसके बदले में आप कृष्ण की कहानी सुनाइए, राधा रानी की कहानी सुनाइए, राधा रानी के भैया की कहानी सुनाइए, तो उसको भी लाभ है सुनने वाले को और आपको भी लाभ है बोलने वाले को। हाँ, और स्टोरी किसको अच्छी लगती है बताओ, अभी मैं यहां पर सिद्धांत शुरू करूंगा कि आप कैसे आत्मा हो, परमात्मा कौन है, परमात्मा आपका संबंध क्या है, परमात्मा में कितने गुण है, आप में कितने गुण है, और आप कैसे माया में हो, परमात्मा कैसे माया से फ्री हो, ऐसे बोलेंगे सब लोग सो जाएंगे, नींद की गोली है वो सिद्धांत जो है ना, वो नींद की गोली है, स्ट्रांगेस्ट गोली है, और कोई गोली की जरूरत नहीं। सिद्धांत शुरू करेंगे ना फिलोसॉफी तुरंत नींद आने लगेगी। आपको कोई नींद की बीमारी है, सिद्धांत का प्रवचन दे दो, तुरंत आ जाएगी नींद। लेकिन कथा जो है ना, वो किसकी भी हो, फिल्म स्टोरी की हो या रियल स्टोरी हो भगवान की, कथा में किसको नींद नहीं आती है, लेकिन बाद में कथा में आ जाती है। क्या रोज की वही बता रहे मम्मी, दूसरी बताओ ना। तो ये सीतामा की कथा ऐसी है कि उसको ना दिन भर वो गाय चराने के लिए भगवान के साथ में घूमते थे, लेकिन रात में जब सोने का समय आता था ना घर जाने का, तो बहुत रोता था वो, और रात भर जगता था कृष्ण की याद में। एक दिन जाके बोला कृष्ण को उसने कि मुझे ना आपके बिना नींद नहीं आती है, बहुत याद आती है आपकी, कुछ ना कम से कम आपका फोटो मुझे एक बना के दो, चित्रपट। तो फिर यशोदा माई ने चित्रा सखी को बुलाया, चित्रा सखी राजा रानी की फ्रेंड है, वो चित्रपट बनाने में एक्सपर्ट है बहुत। तो चित्रा सखी के द्वारा एक फोटो बनवा के दिया, फिर वो रात भर फोटो देख के थोड़ा सा रोना उसका कम होता था, ऐसा सखा था वो भगवान का, बड़ा प्रेम का सखा है भगवान का, बड़ा भाई है राधा रानी का। उसके बाद राधा रानी है बीच में, और राधा रानी की छोटी बहन भी है, उसका नाम क्या है, अनंग मंजरी। अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन है। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, ये सब भगवान के धाम में आश्चर्य वाला है सब कुछ चीज है। ये अनंग मंजरी कौन है पता है आपको? अनंग मंजरी बलराम जी का अवतार है। बलराम जी सखी बनकर राधा रानी की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सखी का रूप धारण किया और माधुर्य भाव में, प्रेम भाव में भगवान का सेवा किया, राधा रानी का और भगवान का, घर में ही जन्म लेके वहीं पर सेवा किया उनका। यही अनंग मंजरी जो है ना, वो अगले अवतार में, यानी कि आज के दिन में किसका जन्मदिन है, नित्यानंद प्रभु, वो किसका अवतार है, बलराम जी का अवतार है। तो बलराम जी की पत्नी बनकर आई वो, जानवा देवी इसका नाम है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार, अनंग मंजरी के अवतार जानवा देवी, इनका विवाह हुआ आगे जाकर। तो ऐसा परिवार है। वृषभानु महाराज के कितने भाई थे? टोटल 9 भाई हैं वो, 4 बड़े बीच में वृषभानु महाराज और 4 छोटे, और हर एक भाई को एक एक गांव है बरसाने के आसपास। समझो कमल है, कमल लोटस फ्लावर, उसके बीच की जगह है ना, बहुत जगह होती है ना बीच में, पता है ना आपको, उसको क्या कहते हैं, वर्ल, वर्ल बोलते हैं, वर्ल ऑफ द लोटस, मराठी में क्या बोलते हैं, कमलाचा मदली जागा, वो बरसाना है। और उस कमल को पहले 8 पंखुड़ियां हैं, बिग वंस, वो 8 पंखुड़ियां 8 गांव की तरह है, और हर एक गांव में एक एक भाई रहते हैं, तो हर एक भाई को एक एक कन्या है, तो कितनी कन्या होगी टोटल, 8, और राधा रानी 1 है ना, तो राधा रानी की 8 मेन सखियां जो है वो उनकी फर्स्ट कजिन्स है सब। कौन कौन है, नाम क्या बताओ उनका, लिखो, उसका भी एक याद रखने का तरीका है, हर चीज का फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला, वैसे एक फॉर्मूला है उसका। राधा रानी के साइड में कौन है, विशाखा। कृष्ण के साइड में कौन है, ललिता। तो ललिता के बाजू में चंपकलता, समझ में आया, और विशाखा के बाजू में इंदुलेखा। कितने हो गए टोटल, 4 हो गए ना। अभी चंपकलता के बाजू में चित्रा सखी खड़ी है, और चित्रा के आगे कौन खड़ी है, तुंग विद्या, और यहां पर इंदुलेखा के बाजू में एक ट्विन सिस्टर्स खड़े हैं, दो देवियां, रंग देवी सुदेवी, ऐसा हम लोग याद रखते हैं, वैसे ही वो खड़े रहते हैं हमेशा, कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, उनका जो पोजीशन है वैसे ही रहते हैं वो। तो ये 8 सखियां जो है वो उनकी फर्स्ट कजिन्स है, और वो राधा रानी और कृष्ण के साथ में प्रेम से लीला करते हैं। अभी आप मुझे एक बात आपको कभी भूलना नहीं चाहिए कि बरसाने का विशेष भाव क्या है। बरसाने का विशेष भाव यह है कि श्याम सुंदर कृष्ण भगवान स्वयं वहां पर सखी बनकर निवास करते हैं, इसलिए उनको, इधर देखो फोटो में देखो, चुनरी ओढ़ के रखा हुआ है, दिख रहा है आपको, यहां से एक चुनरी ऐसी है जो यहां से लेकर राधा रानी को क्रॉस करके वहां तक पहुंची है, ऐसे किसी भी मंदिर में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। चुनरी जो है ना राधा रानी को ओढ़ते हैं, लेकिन कृष्ण को कभी ओढ़ते नहीं। केवल बरसाना एक वर्ल्ड में पूरी ऐसी जगह है जहां पर स्वयं कृष्ण भी सखी बनकर निवास करते हैं। इतना भगवान राधा रानी पर प्रेम करते हैं कि उनकी इच्छा के लिए सखी बन जाते हैं। बरसाने का और एक महात्म्य ऐसा है कि सखी केवल कृष्ण नहीं बनते हैं, शंकर भगवान भी सखी बनकर आते हैं वहां पर, गोपेश्वर महादेव बनकर, सारे देवता भी सखी बनकर आते हैं। यहां तक कि बरसाने में एक जगह है, इसका नाम है बिहार कुंड, लिखो बिहार कुंड। उसका और भी एक नाम है गौरी कुंड। हाँ, उसमें क्या हुआ है कि शंकर भगवान आकर सखी बनने का प्रयास कर रहे थे, मतलब लहंगा फेरा पहनने का प्रयास कर रहे थे, उनको जम नहीं रहा था। ये तुम्हारे घर के पास में बिहार कुंड, और वहां पर जब ही वॉज स्ट्रगलिंग, नहीं जम रहा था, तो गौरी जी प्रकट हुई है, और गौरी जी जब प्रकट हुई है तो गौर तेज सब जगह फैल गया, इसलिए उसका नाम पड़ा गौर कुंड। तो गौरी ने कहा, आप पुरुषों को कैसे पता चलेगा कि श्रृंगार कैसे करना है सखी का, हम आपको श्रृंगार करते हैं। इसलिए पत्नी ने मिलकर हाथ बटाकर महादेव जी पति का सखी का श्रृंगार किया और सुंदर सखी बना दिया। फिर बोला अभी जाओ, और जाके क्या किया उन्होंने, राधा रानी को पुकारा, क्या बोला, सुन लो टेर हमारी ओ वृषभानु दुलारी, बोलो सुन लो टेर हमारी ओ वृषभानु दुलारी, मतलब क्या, वृषभानु दुलारी, वृषभानी को जो बड़ी प्यारी है, इसको बड़ा प्रेम करते हैं, उसका नाम वृषभानु दुलारी, वृषभानु नंदिनी, वृषभानु कुमारी। और टेर का मतलब क्या, हाक, पुकार। सुन लो टेर हमारी, राधा रानी को पुकार रहे हैं हम लोग, हाँ हे राधा रानी हमारी पुकार सुन लो, हे वृषभानु दुलारी, ओ वृषभानु दुलारी, सब बोलेंगे प्रेम से बोलेंगे, सुन लो टेर हमारी, बोलो ओ वृषभानु दुलारी, ओ वृषभानु दुलारी, राधे राधे
राधे राधे
राधे राधे
राधे।
ऐसे एक ही जगह है पूरे वर्ल्ड में जहां पर सारे देवता लोग, पुरुष हो या स्त्री हो, राजा रानी को पुकारने के लिए आते हैं। सबके स्वामी जो श्याम सुंदर जी हैं वो भी यहां पर पुकारने को आते हैं, ऐसी जगह है। सब लोग अपना स्वामित्व छोड़कर यहां पर आते हैं और महारानी को पुकारते हैं, क्योंकि इनकी कृपा पर ही पूरी दुनिया चलती है। जितना भी प्रेम है वो सब इनकी तरफ से आता है, जितनी भक्ति है वो इनकी तरफ से आती है। आप लोग समझते हो आप भक्त हो, तो आपके अंदर भी थोड़ी बहुत जो भक्ति है वो भी इनकी तरफ से आई हुई है। ये स्रोत है उसका, सोर्स, सोर्स ऑफ लव एंड डिवोशन। हम लोग भी इसलिए यहां पर आते हैं कि यहां वहां से लेने के बदले में सोर्स में आके लेके जाए, है ना, कम टू द प्लेस वेयर इट इज बिगिनिंग। जैसे यहां पर गंगा जी बहुत जगह घूमती है, हम कहां जाते हैं कभी कभी, गंगोत्री जाते हैं, यहां पर गंगा शुरू होती है। सबसे प्योर गंगा का जल कहां होता है, गंगोत्री। उसके आगे भी एक जगह है, पता है कौन सी जगह है, गोमुख। गंगोत्री से 19 किलोमीटर आगे पहाड़ में जगह है वो, और वहां सफेद बर्फ के पहाड़ से अंदर ऐसा पानी आ रहा है बाहर से, पता नहीं कहां से आ रहा है, वो कहते हैं गोमुख। तो उधर तो सबसे ज्यादा प्योर पानी हरता है। तो वैसे ही राधा रानी प्रेम का सागर है ना, प्रेम का उगम है, यहां पर सबसे शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है, इसलिए हम लोग यहां पर आते हैं। तो यहां पर बहुत सारी लीला हुई है। जब राधा रानी का विवाह हुआ कृष्ण से, तो राधा ने कहा कि आप मेरे घर पे ही घर जमाई बनकर रह जाओ, तो इसलिए वो वहीं पर रहते हैं, वहीं पर रहे हुए हैं। बहुत अद्भुत जगह है बरसाना, थोड़ा समझना मुश्किल है। यहाँ पर लीला ऐसी होती है कि पूरे वृंदावन में ऐसी लीला नहीं होती है, वैसी लीला बरसाने में होती है। और ऐसे सुंदर कॉन्फिडेंशियल गुप्त लीला में कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए, इसलिए राधा रानी की प्रताप से कंस का कोई राक्षस वहां पर नहीं आया। एक बार कंस आया था खुद ही, तो क्या हो गया उसका, फिर मालूम है क्या हो गया, गलत भाव से अगर कोई बरसाने में आता है तो यही हाल होता है। वो कृष्ण को मारने के लिए ढूंढे ढूंढे आया था, तो क्या हो गया उसका, किसी को याद नहीं है? आप लोग तब जो जोर से हंसे थे जब मैंने कहानी बताई थी। वो कंस जब वहां पर आया कृष्ण को मारने के लिए ढूंढे ढूंढे, तो वो कन्या बन गया, उसका शरीर ट्रांसफॉर्म हो गया, वो लेडी बन गया, उसका नाम पड़ा कंसनी गोपी। और 6 महीने तक उसको गोपियों ने गोबर के कंडे लिपवाए। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोबर के कंडे लिपवाए? मेकिंग काउडंग केक्स। कंस के हाथ से वो थपथपाया उसको और सुखा के टोकरी में डालना, और टोकरी में डाल के जाके जमा करना, स्टैक करना उसको, रोज गोबर से, गोबर और गोमूत्र से गौशाला साफ करना, गाय को धोना, गाय का दूध निकालना, गोबर इकट्ठा करके उसको मट्टी मिला के उसका कंडे बनाना, फिर सुखवाना, फिर सुखवा के इकट्ठा करना, इकट्ठा के टोकरी में डालना, सर पे लेके जाना, और उसको पाले में ना घर बनाते हैं उसका, पता है गांव में उसकी झोपड़ी बनती है एक कंडों की, फिर निकाल के उसको यूज करते हैं। कंस महाराज को 6 महीने कन्या बनकर वहां पर ऐसा काम करना पड़ा। फिर राजा रानी के चरणों में गिरा, एक दिन बोला माफ करो, कुछ ना करो, कैसा मेरा अवस्था बना के रखी है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा मैं। तो राजा रानी डांटती है उसको, दोबारा आओगे ना परमानेंट कन्या बना दूंगी, याद रखना, यहां पर आने की हिम्मत की, देखकर भी मुड़के देखा यहां पर तो भी कन्या बन के रहोगे, चलो यहां पर स्नान करो मेरे कुंड में, यहां पर स्नान करोगे दोबारा पुरुष शरीर प्राप्त होगा, और चले जाओ यहां से, कोई यहां पर आना नहीं चाहिए आपका आदमी। तो वैसे छलांग लगाया और डुबकी मारते ही तुरंत पुरुष शरीर प्राप्त हो गया। वैसे ही गीला कपड़े में जो भागा ना वहां से मथुरा तक, टर्न करके भी देखा नहीं, क्यों, कहीं माइंड चेंज हो गया तो, है ना, अभी तो बोला है कि जाओ और चेंज कर दिया तो फवस फ्री बन जाएगा ना, तो माइंड चेंज करने के पहले कपड़ा वपड़ा बाद में चेंज करेंगे, पहला भागो यहां से। और जो भागा दोबारा लौट के नहीं आया, ना किसी राक्षस को भेजा, इसीलिए बरसाने में कोई राक्षस कभी आया नहीं, कोई वर्णन आता नहीं, एक राक्षस आया भगवान ने मारा वगैरह, कोई वर्णन नहीं आता है, बाकी सब जगह वर्णन है। ये राजा रानी की महिमा है, प्रताप है उनका, कि यहां पर गुप्त लीला होती है, प्रेम लीला होती है, तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए बरसाना बहुत ही स्पेशल जगह है। कृष्ण भी वहां पर पुकारते पुकारते आते हैं, हम लोग सब लोग उनको दुनिया भर पुकारते हैं, है ना, सब देवता भी दुनिया भर पुकारते हैं, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो, आपको प्राप्त करना है, लेकिन जिनको दुनिया पुकारती है वो यहां पर पुकारते पुकारते आते हैं। किसको पुकारते हैं? सुन लो टेर हमारी, ओ वृष भानु दुलारी, राधे राधे, बोलो राधे। तो ऐसे राधा रानी के मंदिर में सब लोग हृदय से प्रणाम करो और प्रार्थना करो, याचना करो कि हमें भक्ति देना। इन इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन कॉल हर मदर ऑफ डिवोशन, सोर्स ऑफ डिवोशन। तो ये जगत जननी है, महाविष्णु की भी माता है ये, महाविष्णु भी इनके तरफ से जन्म लेते हैं। तो इसलिए हम सब लोग बरसाने में आते हैं तो केवल एक ही भाव से आते हैं कि हमें कृपा प्राप्त हो जाए। राधा रानी की कृपा मिलेगी तो दुनिया में कोई भी संकट आपको स्पर्श नहीं करेगा। और उनकी कृपा का मतलब क्या है, आपको कृपा मिली का मतलब क्या है? अगर आपको कृपा मिली है तो आपको कृष्ण के प्रति प्रेम निर्माण होगा। आपने अभी सब क्रोसिन खाया तो उसका वो इफेक्ट क्या है? हाँ, क्रोसिन खाया तो इफेक्ट क्या है उसका? हाँ, किससे? क्या तुम लोग अभी थर्ड ईयर पूरा हो गया ना आपका? क्रोसिन किसके लिए देते हैं? क्रोसिन इज नॉट पेन किलर, मेनली इट इज एंटीपायरेटिक, उसको फीवर के लिए देते हैं, मेन पेन बाद में। तो आपको बुखार आया है और आपने क्वेश्चन खाया है तो क्या होता है? बुखार उतर जाता है, तो उसका प्रूफ है ना वो कि क्वेश्चन खाया था, असली क्वेश्चन, नकली नहीं, असली खाया था इसलिए बुखार उतर गया। उसी तरह से राधा रानी को पुकारा और कृपा मिली आपको, उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ यह है कि आपको उनके प्रिय जो श्याम सुंदर जी हैं उनके चरणों के प्रति प्रेम और भक्ति मिलेगी आपको, तो यही उनकी कृपा है। और वो कृपा जब प्राप्त होती है तो जीवन में फिर बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, इसका तकलीफ होने की कोई जरूरत नहीं है। इसी जन्म के अंत में सारा झंझल जो है वो खत्म हो जाएगा और आप भगवान के धाम में जाने के लिए मुक्त हो जाओगे। सब लोग पुकारो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे।